राम राम तुम क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया।
गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम के अपने को है सीमा। रावण समय है मांगे क्षमा।
बज सत्य का डंका जल पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम संग, आए लक्ष्मण जैसा भाई।
पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने अबाओ रघुराई।
राम में शक्ति अगर है राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ।
राम ही तो करुणा में है शांति में राम है, राम ही है एकता में प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है।
शांति। पल पल है भारी विपदा है आई, कौन सी विपदा आई। इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में कौन सी विपदा आई है। कृष्ण धर्म में एक महिला संत का वर्णन है जिसका नाम था सेंट थेकला। वो जवान थी और उसका एक युवक से प्रेम था और उसकी शादी होने वाली थी, और एक सुबह सुबह घर की बालकनी में वो खड़ी है और वहां से एक संत गुजर रहा है, सेंट पॉल, और उसकी आवाज में कशिश है। वो सेंट पॉल एक गीत गा रहा है और गीत का अर्थ है, प्रभु को वो प्रिय है जो पवित्र है। He that is chaste in body and spirit is loved by the Lord, जो शरीर से और मन से पवित्र है। वो थेकला खड़ी है बालकनी में और उसका गीत सुनती है और उसको आकर्षण होता है उस गीत से, सुनती रहती है। दूसरा दिन फिर से वो संत अपना एक तारा लेकर वहां से गुजर रहा है और गीत गा रहा है, प्रभु को वो प्रिय है जो पवित्र है। इसके अंदर हलचल होने लगती है। तीसरा दिन फिर से वही गीत गा रहा है और ऐसी हलचल होती है इसके अंदर कि वो संकल्प कर लेती, आज से मेरा जीवन केवल और केवल उस परमात्मा के लिए है। और देह की सुधबुद्ध जैसे भूल जाती है और उसका जो लौकिक प्रेम था एक क्षण में जैसे भस्म हो जाता है। और जैसे मीरा भारत में वैसी उसकी अवस्था हो जाती है, ऐसा गहरा तीर लग जाता है। उसका होने वाला पति आता है, अब उसको कोई रस ही नहीं है उसमें। मां शादी की बात करती है परंतु उसे कोई अब इंटरेस्ट नहीं शादी में। दोनों मिलकर पति, होने वाला पति और मां समझाते हैं उसको, परंतु अब वो समझ से परे है। संकल्प कर लिया बस, अब ये मार्ग मेरा नहीं है, अब मेरा जो मार्ग है वो चेस्टिटी, प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य का मार्ग है, क्योंकि वही प्रभु को प्रिय है। छोटा सा वाक्य अंदर जहन दिलो दिमाग में उतर जाता है। बहुत समझाते हैं, नहीं मानती। पति को, होने वाले पति को क्रोध बहुत आता है, इसमें ऐसा क्या हो गया, और बहुत समझाने के बाद भी नहीं सुनती है तो शारीरिक पीड़ा उसे दी जाती है। फिर भी नहीं सुनती, फिर भी तैयार नहीं होती है शादी के लिए। ये कहानी बहुत पुरानी है। वहां के जो राजा, उन तक ये बातें जाती है और उसका होने वाला पति और मां दोनों कहते हैं कुछ भी करो इसको सजा दो, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो इसका देखा देखी सभी स्त्रियां ऐसा करना चालू करेगी, फिर ये सारे पति हैं उनका क्या होगा, इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ कर लिया हमने, ये मानने को तैयार ही नहीं है। फिर राजा उसको बुलाता है, उसको बहुत समझाता है, फिर भी नहीं मानती है। राजा को भी क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कहता है इसको जिंदा जला दो, बर्निंग एट स्टेक। विदेश में इस तरह की सजाएं सुनाई जाती थी, एक खंबा जैसे जीसस क्राइस्ट का हाथ बांध के उसको चलाता है, सारा गांव देखने के लिए कि ये हश्र होता है अगर इस तरह की बातें की तो। और वो जैसे बेखबर, और वो जो होता है सेंट पॉल, उसको भी सजा सुना, उसको भी बहुत पीटा जाता है और वहां से गांव से निकाला, देश निकाला दे दिया जाता है। इसके वजह से सब हुआ। और ये थेकला अभी बहुत यंग है, 20-25 वर्ष के अंदर, और आग लगाई जाती है और वो पुकारती है, ओ क्राइस्ट हेल्प मी, ओ जीसस आई सबमिट माई लाइफ अनटू थी, मैं अपना जीवन तुझे अर्पण करती हूं। हे प्रभु मेरी रक्षा कर, और आग लगाई जाती है और वो आग की लपटें उठती है और उसी समय बारिश होती है, तूफान आ जाता है और सब तितर बितर हो जाते हैं और उसकी वो बेड़ियां खुल जाती है जो बांधा था और वो निकल जाती है वहां से। द फर्स्ट मिराकुलस एस्केप, जैसे कि किसी दैवी शक्ति ने उसकी रक्षा कर ली और वो वहां से चली जाती है। वो सेंट पॉल उसे मिलता है, फिर दूसरे शहर में जाते हैं, उसके होने वाले पति को पता चलता है ये बच गई पर इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो वहां पहुंचता है और वहां बहुत सारे षड्यंत्र करता है, कुछ कुछ लोगों को भड़काता है उसके विरुद्ध, परंतु वो बहुत ही अडिग है, बिल्कुल हिलने वाली नहीं। फिर से उसे पकड़ा जाता है, फिर से बहुत सारे आरोप उस पर लगाए जाते हैं और फिर से एक सजा सुनाई जाती है, परंतु इस बार की सजा बहुत कठोर कठिन थी। अखाड़ा है एक, सारे गांव वाले उसमें बैठे हुए हैं और बीच में उसको धकेल दिया जाता है जहां पर तीन भूखे शेर हैं। फिर से उसे चेतावनी दी जाती है, अब भी मान लो यह तुम्हारा पति है, शादी कर लो इसके साथ। वो कहती है अब हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये जीवन उसको दे चुकी हूं। उसको धकेल दिया जाता है, वो दो शेर आते हैं एकदम भूखे उसको खाने के लिए, पर जो तीसरा शेर है वो शेरनी है और वो बीच में खड़ी हो जाती है। फिर से वो थेकला करुण पुकार, हे प्रभु यदि तू चाहता है कि मैं जीऊं तो ये जीवन तेरा है, मैं कोई प्रयत्न नहीं करूंगी अब बचाने का, स्वयं को मैं समर्पित करती हूं। तो वो जो शेरनी होती है वो बीच में आके खड़ी रह जाती है और दो शेरों का मुकाबला करके उनको भगा देती है। फिर से हल्का सा तूफान आता है और थेकला वहां से भी बच निकलती है और फिर दूर कहीं पहाड़ों पर जाकर बसती है। फिर लंबे समय तक कोई विघ्न नहीं और लोग उसके पास आने लगते हैं और उसके हाथों में चमत्कारिक शक्ति आ जाती है, जिस जिसको वो देखती है वो ठीक होने लगता है, उसकी बीमारियां नष्ट होने लगती है। वो 70 साल तक उस पहाड़ों पर एक गुफा में अकेली रहती है और बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। अब तीसरा विघ्न, वहां के जो लोकल डॉक्टर्स फिजिशियन उस समय के, उनको बड़ी ईर्ष्या होती है कि हमारे सारे पेशेंट्स इसी के पास जाते हैं और उसके पास पता नहीं ऐसी क्या शक्ति है कि जिसको जो दे देती है वो ठीक हो जाता है। और उनको पता चलता है कि ये क्या पावर है इसके अंदर, और उसके जीवन का अध्ययन करके उनको पता चलता है इसमें प्यूरिटी की पावर है, और जब तक इसकी प्यूरिटी भस्म नहीं की जाए ये चलते रहेगा। तो वो तीन ऐसे विकारी युवकों को तैयार करते हैं, युवक उसकी उम्र है 70, और उसके पास भेजते हैं और जाओ उसका शील भंग करो। और वो तीन लोग आते हैं, वो वहां है, वो सामने है, वो पीछे 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 जाती है, और कितना सत्य है पता नहीं, परंतु क्रिश्चियन फिलॉसफी में लिखा है वो जो गुफा है पीछे 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 जाती और गुफा में समा जाती है। जैसे भारत में तीन लोगों के लिए कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु नहीं हुई समा गए, मीरा मूर्ति में समा गई, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण मूर्ति में समा गए, मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है, और महाराष्ट्र के संत तुकाराम मूर्ति सहित समा गए या चले गए वैकुंठ, इनकी मृत्यु का वर्णन है। कितना सत्य है ये पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दिखाया है कि वो आते हैं तीनों और वो फिर से प्रभु स्मरण करते करते पीछे चली जाती है और समा जाती है, और वो गुफा आज भी टर्की में एक जगह है और इस वृत्तांत को कहा जाता है द स्टोरी ऑफ सेंट थेक्ला एंड सेंट पॉल। उसका जो साथी होता है, उसका गुरु ही कह लो उसको, जो अकेला फिर रहा था प्रभु प्रेम की ज्योत जगाने यहां वहां, जिनको सिखाया जिनको बताया वो तो नहीं जागे, परंतु ये थेक्ला अपनी बालकनी में खड़ी, उसको तीर लग गया। कब कहां किसको तीर लग जाए पता नहीं, इसके लिए सेवाएं जारी रहे। ये कहानी है पवित्रता की, ये कहानी है दृढ़ता की, ये कहानी है निश्चय की, ये कहानी है ब्रह्मा कुमारी जीवन की। क्योंकि जहां निश्चय होगा, जहां दृढ़ता होगी और जहां प्रभु प्रेम होगा, इस संसार का कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी विघ्न आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, और ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात पल पल है भारी, विपदा है आई। एक विपदा नहीं है, कितनी है, पग पग पर विपदाएं हैं। जिन्हें संसार का कल्याण करना है उन्हें खुद दुख सहना पड़ेगा। सूरज रे तू जलता चल, सूरज को बहुत जलना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन यू मस्ट बर्न लाइक द सन। यदि सूरज की भांति विश्व को प्रकाश देना है, यदि सूरज की भांति प्रकाशित होना है, तो स्वयं जलना पड़ेगा। पहले जलना अर्थात दुख उठाना, जलना अर्थात सब कुछ सहन करना। और सहन इसलिए नहीं कर रहे कि हम कमजोर हैं, सहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका आदेश है। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात अग्निशिखा, आग अग्नि का पथ है। पल पल सिक सिक झुक झुक और मरमर है। झुकाना है अपने अहम को, मरना है पल पल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की, विश्व कल्याण के लिए कुर्बानी देना ही ब्रह्मा कुमारी जीवन है। और इस जीवन में विपदाएं बहुत है। एक भूल और सीता कहां पहुंच गई, शोक वाटिका। वो सीताएं हम हैं और ये अशोक वाटिका ही सेवा केंद्र ही अशोक वाटिका है। सीता ने सात भूले की जिस कारण वो अशोक वाटिका पहुंच गई। सबसे पहली भूल आकर्षण। स्वर्णिम मृग देखा और क्या हुआ, आकर्षण हुआ स्वर्णिम मृग का। वो स्वर्णिम मृग मोबाइल भी हो सकता है, कोई भाई जिसके पास बहुत धन है वो भी हो सकता है, उसकी कार भी हो सकती है, उसकी जमीन भी हो सकती है, उसका पोस्ट भी हो सकता है, उसका प्यार भी हो सकता है, उसका सहयोग भी हो सकता है। उसके देह का सौंदर्य भी हो सकता है। सीता आकर्षित हुई, ये कौन है, स्वर्णिम मृग, स्वर्ण हिरन, आहा देखने को अच्छा लगता है। उसके तरफ देखती रही, मन ही मन खुशी होती रही देख देख कर। अगर ऐसा हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा, हम अयोध्या ले जाएंगे, माताएं खुश होगी। इस हिरण के पैरों में घुंघरू बांधेंगे और ये जब चलेगा तो माताएं कितनी खुश होगी अयोध्या में। आकर्षण। यह चीज अगर सेंटर पर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, सेवाएं बढ़ जाएगी। दूसरा, इच्छा, मुझे चाहिए। पहला तो आकर्षण, सेकंड स्टेप इच्छा हुई, मुझे चाहिए ये। कहां मिलेगा, कितने में लाया, एक्स्ट्रा है क्या? हमारे थाली में तो ये सब्जी है ही नहीं, कहां से मिली? हमारा आम छोटा है, ये बड़ा वाला कहां से मिला? जनरल में तो गुलाब जामुन था ही नहीं, तुमने कहां से लाया? हमको भी चाहिए। ये चीज कहां से लाई? ये फ्लावर पॉट बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा है क्या हमारे सेंटर के लिए? ये सोफा का कवर कहां मिलता है? भोग के ऊपर का कपड़ा बहुत ही अच्छा है, एक्स्ट्रा है क्या? कामना काम का अंश है, अव्यक्त महावाक्य, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इच्छा, थर्ड स्टेप जिद, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। पहली तो इच्छा थी, पर तीसरा अब इच्छा क्या हो गई? इच्छा के समय समझाया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लक्ष्मण समझा रहा है कि ऐसा स्वर्ण में कुछ नहीं होता है, राक्षस हो सकता है वो, कुछ नहीं। अब जिद का रूप धारण कर लिया, और जब जिद हो जाती है तब व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। उसको समझाया, इस भाई से इतनी फैमिलियरिटी ठीक नहीं, परंतु जब जिद है तो कान बंद हो जाते हैं। जिसको जो समझाना है समझाने दो, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। और उसमें कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। बचपन से इंतजार था किसी राजकुमार का जो घोड़ों पर बैठकर आए, और अचानक ये भगवान मिल गया, अब क्या करें, और ब्रह्मा कुमारी बन गए, सारी इच्छाएं धरी की धरी रह गई। परंतु हां, अब दिखाई दे रहा है कोई ब्रह्मा कुमार जिसमें वो पुरानी यादें आ रही है, और उधर की यादें इधर आरोपित हो रही है, और ऊपर से एक लेबल लगा दो सेवा, और अंदर से इच्छाएं जो अपूर्ण थी उसको पूर्ण करने की इच्छा, अलौकिक तरीके से, ताकि सेफ्टी रहे। सेवा का लेबल चिपका दो, सेफ। जिद, चाहिए चाहिए मतलब चाहिए, जिद करना और सिद्ध करना माया के दो रूप। कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी थी संडे, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्य को सूर्य को असत्य के काले बादल छिपा नहीं सकते, परंतु जब जब हृदय में असत्य आएगा तब तब हलचल होगी, छिपाएंगे, डर है किसी को पता ना चल जाए, छिप छिप के करना। तीसरी स्टेप, चौथा, राम की आवाज, रावण की आवाज को राम की आवाज समझ लेना। उधर से मारीच ने चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीता। लक्ष्मण कहते, सीता कहती है, लक्ष्मण तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ, तुम्हारे भैया उधर घायल हुए हैं। वो कहता है उन्हें कुछ नहीं हो सकता, परंतु सीता कहती है तुम तो कायर निकले, अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, जब भाई संकट में है तुम यहां क्या कर रहे हो। वो आवाज किसकी थी? मारीच की थी, सीता को क्या लगा? राम की है। वो आवाज किसकी है? रावण की। सीता को क्या लगा? राम की है। वो थी मन्मथ और वो था परमथ, पर सीता को लगा ये है श्रीमथ। वो रावण पुकार रहा था, परंतु राम सी आवाज लग रही थी और उस पर विश्वास भी कर लिया कि यही राम की आवाज है। किसी ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर ली, ऐसा लगा कि बस यही सब कुछ है। वही अच्छा लगने लगा। गुणों की तारीफ से यात्रा चालू होकर शरीर की तारीफ में रुकती है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन किसी सेवा केंद्र पर थी और एक भाई वहां आता था, बहुत अनन्य, पर धीरे धीरे पत्र व्यवहार, आप बोलते बहुत अच्छे हो, आपकी मुरली बहुत अच्छी लगती है, धीरे धीरे आपकी आंखें बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे एक दिन दोनों भाग गए, धरा के धरा रह गया ब्रह्मा कुमारी जीवन। आवाज किसकी है? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में रावण या माया सफेद साड़ी और बैच लगाकर घूमती है, इसके लिए जगदीश भाई कहते थे कि भगवान को जानना बहुत कठिन है, सबसे कठिन, कोटों में कोई में कोई, पर उससे अधिक कठिन क्या है? माया को जानना, माया को समझना कि यही माया है, और वो माया सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, बहुरूपी है। माया महाठगनी हम जानी, ऐसी ठगती है कि पता ही नहीं चलता ये क्या हो गया, ये भी माया है। और शर्म की बात कभी कभी हो जाती है। एक किसी सेवा केंद्र पर एक मुस्लिम भाई आने लगा, और ऐसे ही वो भी रेगुलर नहीं, कभी कभी केवल सहयोगी, और उसी में आकर्षण हो गया बहन का, और इतना आकर्षण हो गया, इतनी फैमिलियरिटी, इतना संबंध, कि एक दिन उस मुस्लिम भाई की बीवी सेंटर पर आकर झगड़ा करी कि मेरे पति से बात मत करना अगली बार, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगी, धमकी देकर गई। यहां तक बात बढ़ गई थी। क्यों हुआ ऐसा? अमृत वेला करना, मुरली सुनाना, और दिन भर में सांसारिक प्रेम, क्यों आकर्षण? क्योंकि जब माया ज्ञानी आत्मा के द्वारा आती है, पता ही नहीं चलता यह क्या हो रहा है, इसके लिए ज्ञान की पकड़ बहुत मजबूत चाहिए। इसके लिए भगवान कहते हैं रोज की मुरली का चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, गहराई में जाओ, नहीं तो किसी एक अज्ञात हल्के क्षण में माया पकड़ लेगी, फिर यह अच्छा लगेगा, फिर उसी से बातें करना है। एक एक घंटा तक बातें चालू है, क्या बातें चालू है किसी को पता नहीं। तो चौथा, आवाज नहीं पहचान पाना। पांचवा, अविश्वास। लक्ष्मण समझा रहा है परंतु मानती नहीं है, राम पर अविश्वास। जो सारे जगत का पालनहार है उसको कुछ हो सकता है, उस पर अविश्वास। जब भगवान पर ही अविश्वास कि बाबा अब क्या करेगा मेरा। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने अपना अनुभव सुनाया था, उसने हमसे कहा मुझे पता नहीं ये सत्य है, कैसे सुनाऊं, मैं पहली बार आपको सुना रही हूं, इसके पहले कभी किसी को नहीं सुनाया, शायद कोई विश्वास ही नहीं करेगा मेरी इस बात का। हमने कहा क्या अनुभव है, उसने कहा मैं विदेश गई थी, वहां कोई रिट्रीट चालू थी और फिर सुबह का समय था, मैं थोड़ी टहलने बाहर निकल नहीं कहीं बाहर रुकने गई थी कुछ मास, और वहां एक गीता पाठशाला थी, वहां जाना था। तो मैं बाबा की याद में जा रही थी, सुनसान रास्ता था और अचानक बीच में एक दलदल आ गया और मेरा पैर उस दलदल में पड़ गया और मैं नीचे धस गई और आसपास देखा कोई भी नहीं है दूर दूर तक, और वो दलदल एकदम पता ही नहीं चला दलदल है। मैं नीचे जा रही हूं पैरों तक साड़ी पहने हुए, पैरों तक वो कीचड़ और ऊपर कमर तक उसमें धस गई। और फिर ऐसी हालत हुई कि पहले खुद को कोशिश की बताने की पर कैसे बचाऊं, सब तरफ दलदली दलदल दलदली दलदल, और अब मैं जा रही हूं बस थोड़े क्षण में जीवन लीला समाप्त, कमर तक उस दलदल में। और फिर एकदम से याद आया बाबा, और इतना ऐसा याद किया बाबा को, ऐसा याद किया कि आज तक किया नहीं होगा कि हे बाबा मैंने अपना सारा जीवन तेरे लिए समर्पित कर दिया, अगर तू चाहता है कि मेरा जीवन यहां समाप्त हो गया हो जाए तो मैं समर्पित करती हूं अपने आप को। और ऊपर छाती के ऊपर तक कीचड़ में धस गई और आंखें बंद कर ली और अब बस खत्म ही होने वाली थी। एक क्षण में अगली बार आंखें खोली तो देखा वो कीचड़ से बाहर थी और उसने देखा कौन है तो कोई भी नहीं था। उसको उसने कहा मैं ये किसी को आज तक बताया नहीं, पर ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं समझ में आया। फिर मैं निकली वहां से, वहां एक नल था, फिर पानी से अपनी साड़ी को धोया और फिर वो गीता पाठशाला गई। तो ये चमत्कार था क्या था इस पर लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी, इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं। लोग कहेंगे ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए मैं पहली बार आपको सुना रही हूं। तो ये हो सकता है क्या, वो उसने हमसे पूछा, हमने कहा हो भी सकता है पर इसको अपने तक ही रखना, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, उस पर इतना अटूट विश्वास, इतना अटूट विश्वास कि वो है तो कुछ भी हो सकता है, सारी परिस्थितियां पलट सकती है, इतना विश्वास। उसमें विश्वास कम हो गया तब संदेह आ जाता है कि पता नहीं बाबा ने मुझे यहां क्यों रखा। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे कोकण एरिया में महाराष्ट्र, वहां पर क्लासरूम में दो ही स्टूडेंट आते थे। हमको आश्चर्य लगा इस सेवा केंद्र में केवल दो स्टूडेंट बस। तो हमने उस बहन से पूछा कि यहां दो ही स्टूडेंट, उसने कहा हां हम सेवाएं बहुत करते हैं पर वो एरिया ऐसा है कि लोगों को पता है कि यहां जाना मतलब यहां वहां पर फिश मच्छी खाते हैं सब लोग, यहां जाना मतलब मच्छी छोड़ना पड़ेगा ब्रह्मा कुमारीज में, इसलिए आते हैं कोर्स करते, बाद में रेगुलर कोई नहीं होता है, ये दो ही स्टूडेंट है। तो हमने बोला अच्छा, और उस बहन ने हमको एक ऐसी बात बताई कि वो वाक्य अब तक हमको याद है। उसने कहा यहां आने से पहले मैं एक दूसरे रिट्रीट सेंटर पर थी, वहां इतनी सेवाएं थी दिन रात भागना पड़ता था, इतने गेस्ट, और अभी 10 साल से यहां हूं और यहां पर भी सेवाएं करती हूं पर ये दो ही स्टूडेंट हैं। और उसने कहा मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, मैं अपना सारा समय अव्यक्त वाणियों के अध्ययन में लगाती हूं, सेवाएं सुबह भी करते हैं शाम को भी करता है जितना हो सके करती हूं, पर मुझे जैसे ऐसे लगता है कि जैसे ये सब करने के बाद भी अगर ऐसा है तो मैंने इसको स्वीकार किया है और अपनी स्थिति बनाने में अपना समय में लगाती हूं। और हमने देखा उसकी स्थिति बहुत स्टेबल और बहुत काम, इतनी स्टेबल वो बहन थी। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ विपरीत परिस्थिति है, कलराठी जमीन है, कोई दूसरा होता तो कहता हमको यहां नहीं रहना, हम जा रहे, हमको वहीं लेके जाओ जहां हम पहले थे। बाबा हमने देखा वो बहन को कैसे सुबह 2 बजे से लेकर कंटिन्यूअस बाबा के कमरे में एकाग्र, जरा हलचल नहीं शरीर की, संपूर्ण अलर्ट होकर बैठी हुई, पावरफुल स्टेज। बाद में हमने कभी संपर्क किया नहीं, हमको पता नहीं वहां क्या है, क्या हुआ, बड़े लोग की नहीं, कुछ नहीं। पर उसने जो एक बात कहती थी अब भी याद है, इतने साल पुरानी, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, होई सोई जो राम रची राखा उस पर छोड़ के रखा है अविश्वास। उसके बाद में कितने हुए, 5 या 4, 5 छठवा, रावण को न पहचानना, क्योंकि वो किस रूप में आया था, साधु वेश में आया था। रावण बनकर नहीं आया, साधु वेश में आया, इसके लिए पहचान ही नहीं पाए कि ये रावण है। योग का समय है, कोई हमको कहता है कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, कैसे पहचानोगे कि यही रावण है। मधुबन की बात है, यहां का तो इतना हमको पता नहीं, मधुबन इंटरनेशनल योग का दिन है, 6:30 बजने को 10 मिनट बाकी है, कोई कहे चलो थोड़ा सैंडविच बनाते हैं, और सैंडविच बनाते बनाते 7 और योग छूट गया। योग का समय कोई करे चलो कुछ और करे, कैसे पहचाने, क्योंकि वाइट है और बैच है। पर यही माया है, ब्राह्मणों को माया बाहर वालों से नहीं, ब्राह्मणों की माया ब्राह्मणों के द्वारा आएगी, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतू होंगे। और एक लाइन अपने डायरी में लिख के रखना है, ब्रह्मा कुमारी के लिए ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है, और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। वो सभी पेपर है जिनका हमने कोर्स कराया, जिनको ज्ञान में लाया, वो सभी माताएं जिनको किचन में एंट्री दी, और उन सबको जो मधुबन में लेके गए, शिविर में लेके गए, बाबा से मिलन में लेके गए, और जिनको बाबा से मिलाया, दादियों से मिलाया, सब घुमाया फिराया, सेवाओं में जिनको लगाया, एक दिन वही हमारे विरोध में खड़े हैं, जिनकी मां की तरह पालना की, आज वही उत्तर मांग रहे हैं हमसे, सफाई मांगते हैं, शक करते हैं। ये पूरा परिवार क्या है, हॉल, और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, एक एक सीनियर जूनियर साथी, तीनों जूनियर साथी और सीनियर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हिसाब किताब चुकतू होने हैं, लौकिक वालों से कम इधर ज्यादा। तो रावण को नहीं पहचान पाई सीता, रावण कहता है मैं यहीं बैठूंगा, नहीं लाना है तो मत लाओ, मैं भूखा ही चला जाता हूं। क्या यही तुम्हारे घर में ऐसे ही अतिथियों का स्वागत होता है, अब तो हम बैठ गए, अब तुम आओ नहीं तो हम चले जाएंगे भूखा। ठीक है, सीता हिल गई, और अंतिम भूल सातवी, लक्ष्मण रेखा पार, लक्ष्मण रेखा पार, मर्यादाएं पार, मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया। रावण खड़ा है अपना पुष्पक विमान लेकर, पुष्पक विमान में बिठा के सीधा शोक वाटिका, और वहां जाकर फिर रो, हे राम जी आओ आओ आओ, संदेश वाहक तो भेजो कम से कम, कितना रो, पल पल है भारी विपदा है भारी, पल पल है आई विपदा भारी। मर्यादा है, मर्यादाओं की लिस्ट है यज्ञ की, यज्ञ मंथ में वंस, महीने में एक बार, जो स्टूडेंट्स की मर्यादा है वो स्टूडेंट्स को रिवाइज करानी है, और जो टीचर बहनों की मर्यादाओं की लिस्ट है वो स्वयं को रिवाइज करानी है। बहुत सारी मर्यादाएं हमारे पास, ओपीडी में जैन साध्वी आती है, दिलवाड़ा में पैदल आती है, नीचे से चप्पल वगैरह कुछ नहीं, ओपीडी में आती है, जो ओपीडी पेपर है वो हम लेते हैं और उनको वापस देते हैं, नीचे रखो फिर लेंगी, हाथ नहीं, डायरेक्ट नहीं देना है कुछ। वो चेयर पर नहीं बैठेगी जब तक, अगर इसके पहले कोई भाई बैठा था अगर वहां, नहीं बैठेगी। अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो प्रायश्चित करती है रात में, ब्लड दिया, ब्लड कंप्यूटर में गया, मशीन में गया, मशीन से टेस्टिंग हुई, अब गुरुजी से जाके रात में प्रायश्चित करना होता है। कुछ दिनों पहले एक साध्वी एडमिट थे वार्ड में, P1 वार्ड। वो जो कमरा था, नो फैन नो लाइट, ना फैन, गर्मी कैसी है, 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री, कोई फैन नहीं, कोई लाइट नहीं। कैसी धारणाएं हैं, शाम हो गया बस खा लेगी, उसके बाद नहीं खाएगी। फिर हमारी कैसी है धारणाएं, हस्ती खेलती मौज करो बाबा कहते हैं, पर जो मौज करो कहता है वो ये भी कहता है तपस्या कुंड में बैठो, जो ये कहता है एक तरफ तुम्हारा हंसी खुशी का जीवन है वो ये भी कहता है तुम वनवाह में हो, वो ये भी कहता है सुबह की अव्यक्त वाणी सागर मुरली, किसी से दिल न लगाओ, तुम्हें इस संसार से नफरत आनी चाहिए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तुम वनवाह में हो, तुम्हारा बेहद का वैराग है, जिसने वो कहा उसने ये भी कहा। 70s और 60s और 80s की अव्यक्त वाणियां हैं, गहरी गहरी, एक एक अव्यक्त वाणियों का अगर अध्ययन करें तो कितनी गहराई है उसमें, और हम क्या कर रहे हैं। सहन करने की कितनी शक्ति है। हम कभी कभी ये सोचते हैं ये जैन साध्वी अगर ब्रह्मा कुमारी बन जाए तो कल सुबह तक अव्यक्त फरिश्ता बन जाएगी, ब्रह्मा बाप समान, नासिकाग्र दृष्टि ऐसी चलती है। देखना क्यों है किसी को। रामकृष्ण परमहंस थे, उनके पास कोई भगत आता था वो जान लेते थे ये विकारी भगत है। वो बैठता था, जाने के बाद एक फावड़ा लेकर आते थे, जमीन को खोद के फेंकते थे, वो जमीन उसके वाइब्रेशन छोड़कर गया है वो। कई लोग खाने का लेके आते थे, खाते नहीं थे वो किसी के भी हाथ का, उनको पता था मेरे अंदर जो तपस्या की आग है, जो प्यूरिटी है वो कम हो जाएगी। वो उसको बुलाते थे अपने शिष्य को, नरेंद्र को, तुम खा लो इसको कुछ भी चलेगा, क्योंकि ये तो ज्वालामुखी है प्रचंड, इसको कुछ नहीं होगा। वो कहते थे तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, किसी के हाथ का नहीं खाते थे। मर्यादा है। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया, जब तुम अपनी मां के साथ बैठे हो एकांत में, एक कमरे में, क्या तुम्हारा मन काम से मुक्त है? तुम अपनी मां के साथ बैठे हो कुंती, और तुम और कोई नहीं है कमरे में, क्या तुम्हारा मन काम से मुक्त है? वो कहता है आई एम नॉट श्योर। कौन कह रहा है? धर्मराज। अर्जुन नहीं, जिसने ढेर सारी शादियां कर रखी। भीम नहीं, नकुल सहदेव नहीं, धर्मराज कहता है। इसलिए मर्यादा है, किसकी बुद्धि कब पलटेगी पता नहीं चलता है, इसके लिए सावधान अलर्ट। जिसको राखी बांध रहे हैं वो हाथ एक दिन हाथ पकड़ लेगा। इसके लिए डिटैच्ड। पवित्रता सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है, इसको भूलना नहीं है। प्यूरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस। सेवा नहीं हुई तो चले गई, जिसको रूट के जाना है जाने दो, नहीं चाहिए। आकर्षण, इच्छा, जिद, आवाज को न पहचानना, संशय, रावण को न पहचानना और मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर देना। मर्यादा एक किला है, अंदर रहेंगे तो सुरक्षित है, बाहर गए खलास। जो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कुमार भाई बहुत अच्छा है, उनकी पालना करनी है, उनसे प्रेम से बातें करनी है, सेवाओं की चर्चा करनी है, पर किसी से अत्यधिक लगाव, आसक्ति, लव, प्रेम, मोहब्बत, इश्क बहुत खतरनाक है। क्योंकि वो यहां से बाहर जाकर क्या कर रहा है किसको पता। बंद कमरे में टीवी पे, नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे क्या देख रहा है किसको पता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सब ठीक है, ना तो दोस्ती है ना तो बैर, सब अच्छे हैं, आओ मुरली सुनो और जाओ। मांगने से मरना भला, वास्तव में टॉपिक ये था, ये भूमिका थी। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें किसी से मांगनी नहीं, ये सबसे बड़ी मर्यादा है। और ऐसी सूक्ष्म बातें हैं, उनमें से जब मांगेंगे तो आदत पड़ेगी। कुछ दिन पहले मुरली थी चोरी के ऊपर, क्या करो, कुछ भी बिना मांगे नहीं लो, और उसमें भी श्रीमत में गड़बड़ करते हैं। उस दिन क्लास चालू थी ज्ञान सरोवर में, तो एक भाई ने कहा, बाबा ने तो कहा ना आम नहीं लेना है बिना मांगे, खरबूज तो ले सकते हैं ना। बाबा ने तो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, आम के लिए कहा था मुरली ने। श्रीमत की उल्टी गंगा बहाना, ये अच्छा टॉपिक है, इस पर चिंतन करना। श्रीमत की उल्टी गंगा, सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस। अपने अनुसार श्रीमत को ठीक ठाक मरम्मत करके अपने अनुसार उसको सेट करना, हाँ ये ठीक है। जैसे एक अनोखा सा पक्षी किसी के घर आ जाता है राजा के पास, राजा कहते ये क्या है, ऐसा पक्षी तो हमने कभी नहीं देखा, हम इसको ठीक करेंगे, ये हमारे देश के जैसा पक्षी नहीं है, कैंची लेके आओ, इसके पंख थोड़े काटने हैं, ठीक करना है इसको, इसकी चोंच थोड़ी काटो क्योंकि हमारे देश के पक्षी जैसा नहीं है, पीछे के उसके पंख काटो, इधर के काटो, उधर के काटो, हाँ अब ठीक लग रहा है, ये है हमारे देश का पक्षी, अब उड़ो। अब कहां से उड़ेगा, वो खत्म हो गया हो तो। ऐसी कम से कम 10 से 14 बातें हैं जो मांगनी नहीं। पहला, केयर। केयर, कोई मेरी देखभाल करे, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, कोई तो मुझे देखे, कोई तो पूछे कैसी हो, कुछ खाया क्या। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात निराधार, निस्संग, किसी का संग नहीं, किसी का आधार नहीं, भगवान पूछेगा भगवान देखेगा, उसके दर पर आए हैं, लाश यहां से उठेगी, केयर नहीं चाहिए किसी से, वो केयर कर रहे हैं हमारे, हमारा केयर टेकर स्वयं भगवान है। हाँ, कोई स्वयं केयर करे तो ठीक, पर एक्सपेक्ट नहीं करो कि कोई आके सिर पर ही हाथ रख दे, आहा अच्छा लगता है, बुखार है और कोई बहन हाथ रख दे, भाई रख दे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। दूसरा प्रेम, प्रेम लव, कोई हमसे भी तो प्रेम करे, हमारे साथ भी प्रेम भरी बातें करे, मीठी मीठी प्रेम वाली कोई तो मिले। तीसरा प्रेज, स्तुति, इतना बढ़िया भोजन बनाया अभी तक किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं, कोई तो बोले, कुछ तो बोले, एक बार भी बोले झूठे मुंह ही तारीफ कर ले, पूछे तो सभा में कि किसने किया ये किसकी प्लानिंग थी, ये किसकी आइडिया थी इस तरह की सेवा करने की। स्तुति, भगवान स्तुति कर रहा है, उसके खाते में ऑटोमेटिक जमा हो रहा है, मनुष्यों की स्तुति हमको नहीं चाहिए। मधुबन में एक बहन ने रंगोली निकाली, रात भर जाकर आंगन में निकालते हैं वहां पर 18 जनवरी शिवरात्रि, सुबह सुबह कोई आया और कहा ये किसने निकाले, फालतू एकदम, ये भी कोई रंगोली है, दिल टूट गया। पहले तो रात भर जागे, अगली बार कभी नहीं निकालेंगे, उदासी, रूठना, किस लिए निकाली थी। स्तुति, स्तुति हो जाए। कोई पूछे, विनोबा भावे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, विनोबा भावे मूल्यों में आता है, भूदान, सर्वोदया मूवमेंट, मैं हूं सर्वोदया बाबा बोलते हैं ना। एक बहन जा रही थी जिसने गजरा पहना हुआ था, गजरा पता है बालों में गजरा लगाते हैं ना, वो उससे पूछते क्या ये गजरा तुमको दिखता है, क्या ये जो गजरा तुमने पहना है तुमको दिखता है क्या, अरे नहीं, फिर किस लिए पहना है, किस लिए पहना है, दिखावे के लिए, दूसरे देखे। हमें किसी की स्तुति नहीं चाहिए, हम जो कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके पास अपने आप नोंद हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, हमने ये सेवा की, वो सेवा की, ये किया, वो किया, हमको नहीं चाहिए कुछ। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, मम्मा का मास चालू है, 3-1.5 मास तक मम्मा बेंगलोर में थी, बहुत सारी सेवाएं की, वापस आई, मम्मा से पूछा मम्मा सेवा कैसी थी, मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप। सेवाएं कैसी थी, अच्छी थी, बस। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमने ये प्रोग्राम, वो ये सब किस लिए, क्या कंपटीशन करनी है किसके साथ। जो भी कर रहे हैं वो तो भाई ने बताया कि क्या क्या सेवा मम्मा करके आई, पर मम्मा के मुख से कुछ नहीं। इसी यज्ञ में एक नियम है सेवा समाचार सुनाने का, पर वो सेवा का समाचार कम और मैं का समाचार अधिक होता है, वो सेवाओं का समाचार नहीं होता है, वो मैं का समाचार होता है। वो ब्रह्मा कुमारी का समाचार कम होता है, वो मैं निमित्त आत्मा मेरा जो है ना, वो समाचार होता है, उसकी आड़ में, ब्रह्मा कुमारी की आड़ में मेरी महिमा हो, इसका समाचार ज्यादा है। हमें किसी से स्तुति नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे योगी हो, तुम मुरली अच्छा सुनाते हो, ये क्लास अच्छी है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। हमें किसी के लिए से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कंपटीशन होगी। जैसे रमेश भाई जी एक बात सुनाते थे, सत्य घटना, वो बड़ी खराब बात है। शिवरात्रि है, ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई पहुंचे गवर्नर के ऑफिस में, सेक्रेटरी से मिले, हमारे यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम है, ज़रूर आना। इनविटेशन दिया, सब कुछ हो गया, चले गए। दूसरे सेंटर के भाई बहने पहुंचे वापस, हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम है, जरूर। उन्होंने कहा हम तो आ रहे हैं, हम तो ऑलरेडी आ रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि ये अलग ये अलग। तो उन्होंने कहा अच्छा आप आ रहे, कहाँ आ रहे हो? ये वहां, ये इन्विटेशन कार्ड। ये लोग कहते नहीं नहीं यहां मत जाना, ये अच्छे नहीं है, हमारे इधर आना। कौन कह रहा है? दूसरा सेंटर क्या कह रहा है और किससे कह रहा है? जो अज्ञानी है, जिनको कुछ भी पता नहीं, वहां मत जाना, वो लोग ठीक नहीं है, हमारे यहां आओ। ये सेवा है या डिससर्विस है? किस प्रकार की सेवा है ये? जहां संघर्ष है, ऐसा तो बाबा ने कभी नहीं सिखाया। किसी की भी हमको स्तुति नहीं चाहिए। अगला, चौथा, अटेंशन। एक बताया था केयर, एक है अटेंशन। कोई दूसरा हम पर अटेंशन दे, क्यों अटेंशन दे? मेरी विशेष कोई पालना करे, क्यों करे पालना? तुम दूसरों की पालना करो, बहुत पालना ले ली। उसके बाद है मदद। मदद मांगनी नहीं है किसी से, मिल जाए तो बहुत अच्छा। मेरी मदद करो, मैं दुख में हूं, मैं समस्या में हूं, मुझे कुछ चाहिए, जो मांगना है उससे मांगो, वो देगा। क्या उसे पता नहीं तुमको क्या चाहिए? क्या उसे पता नहीं तुम इस समय कहां हो? भक्ति में कहावत है, यदि चींटी के पांव में घुंघरू हो उसकी आवाज भी वो सुनता है। यहां भगवान सम्मुख है, वो आवाज नहीं सुनेगा। मैं निराकार, इन्वर्टेड कॉमा, साकार महावाक्य, सब कुछ जानता हूं। चार दिन पहले मुरली थी, बाप एक एक बच्चे को देखता है, किसमें कितने गुण है, कौन कितनी सेवा करता है। बाप का लव उससे है जो सेवा से लव करते हैं। मुरली में था अभी कुछ दिन पहले, किसी से मदद नहीं चाहिए। अगला, हमदर्दी, सिंपती। किसी से हमदर्दी नहीं चाहिए, कोई हम पर दया करे, हमदर्दी दया क्यों? इतने क्या हम बेबस और इतने क्या हम निर्बल है? शक्तियां है, कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम है नारी। विवेकानंद से किसी ने विदेश में पूछा था, ये जो स्त्रियां है, अबला, दुर्बल, कमजोर संसार की और सारी, इनके लिए आप क्या करना चाहते हो? इनके लिए आपका क्या संदेश है? उन्होंने कहा था हैंड्स ऑफ, खबरदार, उनको अबला कहा, उनकी मदद, उन्हें मदद की आवश्यकता नहीं, वो खुद दूसरों की मदद करेगी, वो खुद अपने पैरों पर खड़े होगी, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। उन पर दया मत करने की कोशिश करना, वो स्वयं दूसरे पर दया करेंगी। या रूपिणी शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिताम, या देवी दया रूपेणी सर्वभूतेषु संस्थिताम। वो स्वयं शक्ति रूप है, वो स्वयं दया रूप है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, उसे दुर्बल निर्बल मत समझना। इसके लिए किसी से भी हमदर्दी नहीं चाहिए। उसके बाद में वस्तु, किसी से कुछ नहीं मांगना है, कोई वस्तु चाहे धन हो या कुछ हो। अव्यक्त वाणी है, बाबा के महावाक्य है, कभी आए हुए। जगदीश भाई जी ने पूछा था सेवा केंद्र के लिए, तो बाबा ने कहा था सेवा केंद्र ऐसा बनाना कि जिसमें किसी भी विकारी का एक पाई पैसा भी ना लगे, पहली शर्त। दूसरा, सेवा केंद्र ऐसा बनाना कि सेवा केंद्र की दीवार किसी भी विकारी की दीवार से टच ना हो, और तीसरी जो केवल दिल्ली के लिए थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो। ये तीन बातें बाबा ने दिल्ली के लिए कही थी, इस केंद्र के लिए। हमें किसी से कोई वस्तु नहीं चाहिए। और जिन ब्रह्मा कुमारी बहनों में और जिन सेंटरों में पवित्रता बहुत पावरफुल है, वहां पैसे चरणों में आके गिरेंगे अपने आप। किसी से मांगना नहीं है हमको, हम भिखारी नहीं है। किसी की चापलूसी, फ्लैटरी, चाटुकारिता करना यह हमारा कर्तव्य नहीं। कोई होगा कितना भी रईस और कितनी भी गाड़ी और बंगले होंगे, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। ये कोई मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, भगवान का कार्य है। अगर उसे अपनी तकदीर बनाना है तो बनाए, नहीं तो जाए। ये कोई मुझे खुश करने के लिए नहीं करो कुछ, तुम अपना भाग्य बना रहे हो यहां देखकर। ये हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है यहां पर। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ है, उसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। ये मेरा अपना, ये इसको मैं छिपा के रखती हूं, नथिंग। ओपन बुक पब्लिक लाइफ, जिसको देखना है देखो, ये है सारे हिसाब। अगर ऐसा ना हो तो दुख होगा, पश्चाताप होगा। जैसे एक बहन इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, हमने कहा क्या हुआ बोलो तो। वो बोले बोल नहीं सकती, ऐसा कुछ पाप हो गया। क्या हो गया? उसने कहा था जिस सेवा केंद्र में मैं रहती हूं और जो भंडारी आती है और मुझे खबर मिलती थी कि मेरे लौकिक में पिताजी बीमार है, भाई शराब पीता है, और मुझे उनकी मदद करनी थी, मैंने यहां की भंडारी का पैसा हर महीना उधर भेजा। पिताजी भी मर गए और भाई भी कहां चला गया, पाप हो गया, क्या करूं। गरीबों की पाई पाई का पैसा था वो जो भंडारी में आ रहा था। मैंने अपने लौकिक में भेजती गई, किसको बताऊं? अपने बड़ी बहन को बताऊंगे तो निकाल देंगे या कुछ कर देंगे, क्या करूं। आत्मा परवश हो जाती है मोह बंधन में। इसलिए कोई वस्तु हमको किसी से नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा तो चलेगा, पटेहाल रहेंगे तो चलेगा, मांगेंगे नहीं किसी से कुछ भी। ना जमीन चाहिए ना कुछ, मिल जाए तो सब मिलेगा अपने आप, उसका कार्य हमारा नहीं है। उसके बाद सहयोग, किसी का सहयोग नहीं चाहिए। कोई करे तो उसका भाग्य बनेगा, बहुत अच्छा, हम लेंगे भी पर मांगेंगे नहीं, और मांगने से मिलता भी नहीं है। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो गया, अपने आप सब होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ न्योछावर कर देगा। उसके बाद में शक्ति, पावर। हमारे लिए योग करो, हमारा सेवा केंद्र बन रहा है सकाश दो मधुबन से, विशेष सकाश। हमारे यहां विघ्न बहुत है, सकाश दो, सकाश दो नहीं, सकाश तुमको देनी है। किसी से क्यों लेनी है सकाश? मधुबन से क्यों लेनी है सकाश? क्यों हम कहें कि हमको शक्तियां दो? क्यों हम कोई दूसरा हमको शक्तियां देंगे, हम दूसरों को शक्तियां देंगे? इतने हम कमजोर नहीं हो गए कि अब शक्तियां मांगनी पड़ रही है? हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए बाबा से बोलो एक बार, बाबा तो हमारी सुनता ही नहीं। फिर हम में और वो संसार की स्त्रियों में क्या अंतर हो गया? हमको फोन आते हैं, भाई जी मेरी बेटी को आज लड़का देखने आ रहा है, प्लीज मधुबन से सकाश देना, रिश्ता पक्का हो जाए, और बेटी भी ब्रह्मा कुमारी है उसके हिसाब से। फिर इनमें और हम में क्या अंतर? एक माता किसी सेवा केंद्र पर गए थे भट्टी के लिए, तो पूछ रही थी, भाई जी बेटी की शादी है, मधुबन में इनविटेशन भेजू क्या? पांडव भवन में इनकी समझ में और हमारी समझ में क्या अंतर है? फिर बेटी की शादी करनी है परंतु पक्का ब्रह्मा कुमार चाहिए ताकि दोनों ज्ञान में चल सके। और बुढ़ापे का तो सहारा पोता तो मस्ट है जिसको ब्रह्मा कुमार बनाना है। बचपन से ही एडवांस पार्टी की आत्मा ही होगी, वो आएगी तो वो भी कहां जाएगी? विश्व सेवा का भाव है। उसके बाद में सुख और शांति किसी से मांगनी नहीं है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन उस दिन ओपीडी में आई थी, कह रही थी, भाई जी हमको तो शर्म आती है कोर्स कराने में, हम ही अशांत है तो दूसरों को क्या शांति का पाठ पढ़ाए, हम ही हिल रहे हैं अंदर से, हमारे अपने हिसाब किताब चालू है, कैसे कोर्स कराए 7 दिन का कि उनको बताए आओ हमारे पास ये सुख शांति यहां मिलती है। हमारे बोल में पावर कहां से होगी क्योंकि हम खुद ही अशांत है, हमको कुछ दवा दो, नींद नहीं आती है रात भर। फिर हम में और इनमें क्या अंतर हो गया? संसार के लोग और हम में सेम हो गए ना, हम भी वही मांग रहे हैं, बाबा शांति शांति सुख। कितने हो गए? 10। कुछ भी मांगना नहीं, मिलेगा अपने आप, मांगने से मरना भला। मांगने का संकल्प भी कमजोर संकल्प है, ठीक है। तो यात्रा हमने चालू की, पल पल है भारी से, वो 7 बातें जो सीता को शोक वाटिका में पहुंचा देती है, और उसके बाद मर्यादाओं की कुछ बातें, और एक मर्यादा मांगना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर मांगना ही पड़े तो बाबा से मांगो बस। एक बार दादी जान की विदेश गई, बहुत पहले की बात है, वहां की बहन बता रही थी, वो सब योग कर रहे थे, दादी ने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जमीन के लिए योग कर रहे हैं। दादी ने कहा क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? दादी जमीन के लिए योग कर रहे हैं। दादी का ये कोई कारण है योग करने का? ये बहुत पुरानी बात है जब कुछ नहीं था उधर लंदन में। योग करो, सब कुछ अपनी शक्ति से करना है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो करेंगे वही जो उनको करना है। इसके लिए यही समझना है कि सारा काम मुझे ही करना है, और अपनी आंतरिक शक्तियों से बाहर सहयोगी अपने आप मिल जाएंगे। 10 माताओं को बुलाओ, 100 आ जाएगी किचन में, पर 100 सूक्ष्म सेवाधारियों को बुलाओ तो 10 भी नहीं आएंगे जो अपनी शक्तिशाली मनसा से सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बना दे। ये सबसे बड़ी सेवा है, और ये सेवा केंद्र है, आश्रम है, ये भूलना नहीं है। 5-स्टार होटल नहीं बनाना है उसको, कि जहां लोग आए, अच्छा ये भी है वो भी है, बाहरी चीजों से आकर्षित हो रहे हैं। बहुत टिमटिम, आश्रम भगवान के महावाक्य है, सेवा केंद्र अर्थात आश्रम, कोई अंदर आए तो उसे एकदम शांति का अनुभव हो, ये है आश्रम। कोई आए तो ये नहीं, ये पर्दा कहां से लिया, ये कितने में मिला, ये कहां से मिला, और सारी चर्चा उस पर। और सेवा केंद्र ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। किसी एक भाई ने हमको कहा था हमारे सेवा केंद्र में हम क्या करें, जैसे ही मुरली क्लास पूरी होती है कुछ 3-4 भाई है वहां बैठकर पॉलिटिक्स की चर्चा चालू कर देते हैं, रोज का हो गया है, क्या किया जाए? क्या ऐसे सेवा केंद्र का वायुमंडल शक्तिशाली होगा? कभी नहीं। इसके लिए सेवा केंद्र, सेवाएं इतनी विस्तार को प्राप्त हो चुकी है, अपने आप मीडिया इतनी सेवा कर रहा है। अभी जो मुख्य सेवा करनी है वो दो है, एक जो भाई बहने हैं उनकी पालना जो है पहले से, और दूसरा जो छोड़कर चले गए उनको वापस लाना। ये दो मुख्य सेवा रही है। एक वो सेवा है नए लोगों को लाना, उसमें सबका बहुत ज्यादा ध्यान है, पर जो सेवा करनी है वो है जो पहले से है यहां पर, उनको शक्तिशाली बनाना, उनकी पालना करना, उनकी धारणाएं मजबूत करना, ताकि हम देखते हैं कई लोग कोर्स करते हैं, ज्ञान में आते हैं, 6 मास चलते हैं, फिर गायब, शायद पालना नहीं मिल पाई। एक भाई इतना दूर से साइकिल से आया था, अभी अभी ज्ञान में आया, 1200 किलोमीटर साइकिल से आया मधुबन, और रास्ते भर पर्चियां बांटते हुए, इतनी खुशी उसको, इतना नशा, बाबा 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 करते हुए, आज ज्ञान में ही नहीं है। ऐसा डिस्टर्ब हो गया वहां पर, कुछ बातें हो गई, क्या पता क्या, छोड़ ही दिया पूरा, इतना नशा था। क्यों? पालना नहीं दे पाई शायद। तो पालना उनको जो है, और वापस लाना उनको जो छोड़कर चले गए, ये दो मुख्य सेवा रही हुई है। बाकी जो नए हैं और उनको ज्ञान में लाना और स्नेह मिलन करना और प्रोग्राम करना और मधुबन ले जाना, शिविर में ले जाना और बहुत सारी चीजें करना, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो है, पर ये दो सेवा भूलनी नहीं है। इसके लिए हर बहन को जो उनके सेवा केंद्र में जितने भी लोग आते हैं, चाहे 5 या 10 या 20 या 100 या 1000 या 2000, कितने ज्यादा लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी क्या है, तपस्वी कितने हैं उसमें से, योगी आत्माएं कितने हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो उनकी पालना करनी है, तो ये दो सेवाएं हैं। और जो बातें बताई, कौन कौन सी चीजें मांगनी नहीं है, पहले लव, पहला केयर, दूसरा प्रेम, तीसरा स्तुति, चौथा अटेंशन, पांचवा मदद, छठवा हमदर्दी, सिंपति, हम बहुत बीमार हैं, कोई तो हमको देखे, हमको पूछे तो सही कि भोजन किया कि नहीं किया, दवाई लाके दू क्या, तुमको दूध चाहिए क्या, कुछ चाहिए तो बताओ। एक मधुबन का भाई अनुभव सुना रहा था, एवरेल्दी में एडमिट हो गया, दूसरे भाई को कहा भाई मुझे थोड़ा खिचड़ी लाके देना, जो भाई सुबह गया शाम को ही आया सीधा, दिन भर गायब, दिखाई नहीं कहां चला गया, और वो इसका इंतजार करता रहा, अब आएगा 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 आएगा। देहधारियों का कोई भरोसा नहीं है, बोलते कुछ करते कुछ, इंक्लूडिंग ब्राह्मण आत्माएं। अगला, वस्तु, कोई भी वस्तु, वस्तुओं में और एक चीज है, टोली और भोजन। ये दो भी है, जो है वो है बस, ये दो वो दो, ये दो वो दो, ये कहां से लाया वो कहां से लाया, और टोली, ये भी मांगना नहीं। उसके उसमें पैसा, धन भी है, धन आके गिरेगा। दादी प्रकाशमणि ने एक बार, बहुत पहले माताएं आई थी बहुत सारी, तो उनको ऐसे ही कहा कि भाई जितना अगर दे सके, यज्ञ में थोड़ी कमी है, जितना सहयोग कर सके कर रहे हो। सब माते कहा नहीं नहीं हम बहुत गरीब है, बहुत गरीब है दादी, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं, हम तो सेवा करने आए, वगैरह वगैरह वगैरह। दादी कहा ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। शाम को वो सारी माताएं मार्केट से बैगे भर भर के अपनी अपनी बहू ननद सबके लिए सामान ले लेके आ रही है, उसके लिए पैसे, इधर के लिए नहीं है, इधर के लिए कुछ नहीं। जरा सा कुछ हो गया तो हॉस्पिटल में 1,00,000 रुपए खर्च कर देंगे धक से, प्यार बहुत है शरीर से, बस सेवा के लिए हिसाब हिसाब। आत्माओं को भी समझना है, जिसको देना है वो देगा, जिसको नहीं देना है उसको कुछ भी करो कभी नहीं देगा, और ऐसों का हमको चाहिए भी नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। ये परमात्मा तालाब साहूकारों से नहीं भरेगा, किससे भरेगा? गरीबों की पाई पाई से भरेगा। अगला सहयोग, अगला सुख शांति, अगला शक्ति, हो गए पूरे? तो कुछ भी मांगना नहीं है, मिल जाएगा अपने आप। और जो नहीं मांगेगा उसको सब मिलेगा, और जो मांगेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये एक दूसरा नियम है। तो अपने आप को सशक्त करना है। तो अभी हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास ऑप्शन थी।